Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajatagiri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे ॐ शान्तिः शांति शांति
ओ ओ ओ कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद पर छठे अध्याय में पांचवें मंत्र की व्याख्या है।
आदि ससंयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालाद् अकलोपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमेद्यं देवं स्वचित्तस्तमुपास्य पूर्वं सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्तते अयम् धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थं अमृतं विश्वधाम तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदामदेवं भुवने समेद्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।
परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि स आदि स संयोग निमित्त हेतु हो। स शब्द का अर्थ होता है वो परमात्मा, जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो उपनिषद ने उसको तत् कहा और उसी को यहां स वह परमात्मा आदि संयोग निमित्त हेतु हो। संयोग निमित्त हेतु जीवात्मा के साथ सबसे पहले तो अनात्मा का संयोग हुआ है। आप और हमारे साथ अनात्मा देह आदि का संयोग हुआ है। उस संयोग का जो निमित्त है वो अविद्या है, आदि संयोग। यूं तो वेदांत में उस अविद्या को भी अनादि कहा, लेकिन उस अनादि अविद्या का जीवात्मा के साथ जो संयोग है, संबंध है, वो हम लोगों की दृष्टि से वह अनादि भले ही हो, परमात्मा की दृष्टि से वह आदि है। परमात्मा को पता है कि किस दिन, किस घड़ी, किस समय में जीवात्मा का अनात्मा के साथ, अविद्या के साथ संयोग हुआ। अविद्या के साथ होने वाले संयोग ही जीवात्मा के अस्तित्व है। इसी तरह तो वह अज्ञान और अज्ञान के तमाम कार्य, उन कार्यों के साथ आत्मा का संयोग, आध्यासिक संयोग, उसका भी साक्षी है वो। इसी तरह इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो संयोग है, उस संयोग का कारण है, हेतु विद्या। अनात्मा के साथ संयोग का हेतु कारण है अविद्या, और परमात्मा के साथ संयोग का कारण है विद्या। ये दोनों का वह साक्षी है। जीवात्मा परमात्मा के साथ जो संयोग होता है उसका भी वह कारण है, अर्थात परमात्मा की ही कृपा से जीवात्मा को वह तमाम हेतु यानी साधन की उपलब्धि होगी जो विद्या के द्वारा परमात्मा के साथ एकता हो सकती है। अविद्या के द्वारा जगत के साथ एकता होती है तो विद्या के साथ परमात्मा के साथ एकता होती है। अविद्या का कार्य और है अस्मिता राग द्वेष आदि, और विद्या के कार्य हैं भक्ति वैराग्य विवेक षट संपत्ति मुमुक्षता आदि। तो इनके माध्यम से विद्या और विद्या के माध्यम से परमात्मा के साथ संयोग, खुद परमात्मा साध्य भी है और खुद परमात्मा साधन भी है। मुमुक्षुओं के लिए वह परमात्मा साधन बनकर उसके सामने आता है, उपस्थित होता है, और उस साधन के द्वारा प्राप्त होने वाला वही परमात्मा है। मुमुक्षुओं के लिए वही परमात्मा साधन बनकर, भोग के साधन बनकर सामने आता है, और बुभुक्षुओं के लिए साध्य वही परमात्मा विषय बनकर उपस्थित है। इसलिए वेदांत में कुछ बातें ऐसी होती है कि साधारण व्यक्ति उलझ जाता है, समझ नहीं पाता है। ये कई परमात्मा भोग बनकर कैसे अज्ञानियों के सामने उपस्थित होता है, और वही परमात्मा साधन बनकर मुमुक्षुओं के सामने साधन के रूप में उपस्थित होता है। क्योंकि वेदांत की दृष्टि में जगत में परमात्मा की सत्ता के अलावा और कोई सत्ता नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी प्रतीत है उसी एक अधिष्ठान ही अनेक रूप में विवर्तित होता है। उसी बात को यहां संकेत कर रहे हैं। आदि ससंयोग निमित्त हेतु परः त्रिकालः। काल के तीन भेद हैं, आप लोगों को पता ही है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये तीनों काल सापेक्ष हैं। भूतकाल किसके लिए भूतकाल है, वर्तमान काल किसके लिए वर्तमान काल है, और भविष्य काल किसके लिए भविष्य काल है, ये काल की ये विभाजन ये सापेक्ष है। वही समय मेरे लिए वर्तमान होगा तो किसी और के लिए भूत हो जाएगा, और वही समय कि मेरे लिए वर्तमान होगा तो किसी और के लिए भविष्य हो जाएगा, और वही समय किसी के लिए भविष्य है तो किसी के लिए वर्तमान है। हमारे लिए जो समय भविष्य है, देवताओं के लिए वही समय वर्तमान है। हमारे लिए जो भविष्य है वो भूत भी हो सकता है। कालः, ये काल का जो विभाजन है, परः, वह तीनों काल का साक्षी होने के कारण वो काल से परे है। हम काल के प्रभाव में पड़ जाते हैं, तीनों काल के साक्षी नहीं बन पाते। साक्षी तो वो होता है जिस समय जो वस्तु हो उस समय उसको जानता हो। हम भूतकाल इतनी अतीत में गए हैं कि उन सब भूतकाल का हम साक्षी नहीं बन सकते। अतीत अनंत भूतकाल में क्या क्या हुआ, क्या वो समय कैसा था, उसमें क्या क्या हुआ, उसके तो हम साक्षी बन नहीं सकते। जीवात्मा तो परमात्मा ही उसका साक्षी है, और भविष्य काल का भी हम साक्षी नहीं बन पा रहे हैं, तो वो परमात्मा ही उस भविष्य काल का भी साक्षी है। और वर्तमान काल के हम साक्षी तो बन पा रहे हैं, लेकिन जब तक हम वर्तमान काल के साक्षी बन जाते हैं वो फिर भूत काल हो जाता है। तो त्रिकाल, परमात्मा कालातीत है, पर त्रिकाल, और साथ में अकलोपि दृष्टः, परमात्मा अकल है। और हम सभी जीवात्माएं सकल हैं। कल माने कला से युक्त को सकल बोलते हैं और कला से रहित को अकल बोलते हैं। परमात्मा कला से रहित है, क्योंकि कला ही उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, परिणाम आदि सारे भावों का कारण है। ये जो 16 कला विद्यमान है, ये कृष्ण के 16 कला या परमात्मा के 16 कला यहां संबंधित नहीं है। यहां अकल शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा के, जो प्रश्नोपनिषद में 16 कलाओं की अवधारणा हुई है, 6 ऋषि तत्व जिज्ञासा करते हुए महर्षि पिपलाद के सामने जाते हैं और क्रमशः 6 के 6 ऋषियों ने अपने अपने जिज्ञासा को ऋषि के सामने, पिपलाद ऋषि के सामने रखी, और महर्षि पिपलाद ऋषि ने 6 के 6 शिष्यों का यानी ऋषिपुत्रों का प्रश्नों को समुचित उत्तर दिया। उसी क्रम में 6ठे प्रश्न यानी 6ठा ऋषि, जिसका नाम सुकेश भारद्वाज था, उन्होंने पिपलाद ऋषि के सामने कहा, हे ऋषिवर, एक समय की बात है, कौशल देश का राजपुत्र मेरे पास आया। उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम 16 कला पुरुष, विशिष्ट पुरुष को जानते हो, और क्योंकि मैं उसको नहीं जानता था, 16 कला विशिष्ट पुरुष कहां रहता है, कौन है उसकी 16 कलाएं, कैसा है उस 16 कला से युक्त हुआ पुरुष, उसकी क्या भूमिका है, इन सब के बारे में मैं अनभिज्ञ था। हालांकि वो बड़े श्रद्धा और जिज्ञासा लेकर मेरे पास आया था, लेकिन उस समय मैंने उसको सीधा ईमानदारी से कहा कि भैया, मैं उस तत्व को नहीं जानता। और ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं और बताने की इच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं जानता हूं कह रहा हूं, ये बात नहीं है। सुकेशा भारद्वाज ने पिपलाद ऋषि के सामने कहा, क्योंकि मैं इस रहस्य को जानता था, कोई किसी विशेष रहस्य को विद्या को जानता है और कोई जिज्ञासा करते हुए आता है, जानते हुए भी मैं नहीं जानता कहता है, तो वह आचार्य प्रत्यवाय का भागी बनता है, पाप का भागी बनता है। और यदि नहीं जानते हुए भी मैं जानता हूं कहता है तो भी पाप का भागी बनता है, क्योंकि मैं नहीं जानता था इसलिए मैंने सीधे कह दिया कि मैं नहीं जानता हूं। वो उसका जो प्रश्न है मुझे भी खटक रही थी क्योंकि मैं भी नहीं जान रहा हूं उसको। तो आज ये मौका है कि आप जैसे महान गुरु हमें प्राप्त हुए हैं तो आपके सामने मेरा वही प्रश्न है कि वो क्या है, वो सोलह कला पुरुष कहां रहता है। पिपलाद ऋषि ने कहा कि ये शिष्य सुकेशा भारद्वाज जिसको तुम जानना चाहते हो वो सोलह कला युक्त पुरुष यही वह अंतःशरीरे, यही जो तुम्हारा दिखता हुआ जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर ही वो पुरुष विद्यमान है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। स इच्छां चक्रे, उस पुरुष ने सबसे पहले इच्छा की कि मेरे बिना ऐसा कौन सा तत्व का निर्माण मैं करूं और इस जीव को इसको प्राप्त कराऊं जिसके उत्क्रमण करने पर लोग ये माने कि वो आत्मा उत्क्रमण कर गया, जिसके रहने पर लोग ये मान सके कि आत्मा रह रहा है। वास्तव में आत्मा तो न रहता है न जाता है, न जाता है न आता है, लेकिन सामान्य लोक व्यवहार में तो यही माना जाता है ना, मरने के बाद आत्मा चली जाती है, जन्मने के साथ आत्मा उसमें आ जाती है। संसारी लोग तो आत्मा को गमन और आगमनकर्ता के रूप में मानते हैं, एक अज्ञानियों की मान्यता को ही आधार मानकर परमात्मा ने विचार किया, संसार के लोगों को ये लगे कि जिसके उत्क्रमण करने पर परमात्मा चला गया ये मानने लग जावें और जिसके रहने पर परमात्मा रह रहा है ये मानने लग जाएं। ऐसा कोई वस्तु का निर्माण करना चाहिए। तब उसने संकल्प करके उस आत्मा के सोलह कलाओं को निर्माण किया और उन सोलह कलाओं के रहने पर आत्मा यहां है ये मान्यता संसार में है, मानते हैं लोग, और वो सोलह कला निकल जाने पर ये कहते हैं कि आत्मा चला गया है। तो वही सोलह कला से युक्त हुआ पुरुष, सोलह कला क्योंकि इस शरीर में सोलह कला विद्यमान है, वो सोलह कला से युक्त हुआ पुरुष भी इसी शरीर में विद्यमान है। सुकेशा भारद्वाज ने प्रश्न किया, महाराज उस पुरुष के प्रतीति और अप्रतीति, अस्तित्व अनस्तित्व की जो प्रतीति का मूल कारण है सोलह कला, वो क्या क्या है, तो उसकी सृष्टि किसने की। तो पिपलाद ऋषि बोलते हैं कि उसी परमात्मा ने की है। सब प्राणम असृजत, प्राण से लेकर नाम पर्यंत ये सोलह कला है उस पुरुष की। इन्हीं सोलह कला से युक्त हुआ पुरुष इस शरीर में अहम के रूप में, प्रज्ञानात्मा विज्ञानात्मा के रूप में, अहम अहम के रूप में नित्य निरंतर स्फुरित होता है और यही सोलह कला के निकल जाने पर ये अहम अहम करने वाला चेतना को ये माना जाता है कि वो शरीर से चला गया और इसके रहने तक ये माना जाता है कि वह है। उसकी पहली कला है प्राण। प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति हुई है। दूसरी कला है श्रद्धा, उसी को पुरुषवाची में विश्वास कह देते हैं, स्त्रीलिंग में श्रद्धा कह देते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थम ईश्वरम। तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया है ये जो शिव और पार्वती हैं क्या है, तो क्रमशः शिव विश्वास रूप है और पार्वती खुद श्रद्धा रूपी है। अब ये दोनों की कृपा के बिना, श्रद्धा और विश्वास की कृपा फलीभूत हुए बिना स्वांतस्थम ईश्वरम न पश्यति, और जिसकी कृपा होती है तो फिर स्वांतस्थम ईश्वरम पश्यति, याभ्याम बिना न पश्यति, और जिसके द्वारा पश्यति। ऐसे जो भवानी और शंकर हैं, जो क्रमशः विश्वास और श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, उस आत्मदर्शन के लिए मैं पहले इन श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भवानी और शंकर को मैं वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। वही परमात्मा यहां साधन के रूप में बैठा हुआ है, श्रद्धा और विश्वास के रूप में, और उसी का प्रयोग करके साधक उसी का फिर अपरोक्ष करता है, साध्य भी बन जाता है। तुलसीदास जी के श्लोकों से सिद्ध होता है। तो पहली कला जीवात्मा की है प्राण, दूसरी कला है श्रद्धा। आप लोग, हम लोग जितने भी संसार में मनुष्य प्राणी हैं, ये नहीं है कि उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है ही नहीं, ये नहीं कह सकते। श्रद्धा विश्वास है, लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास का विषय क्या बना रहा है और क्या बन रहा है उस पर निर्भर करता है। चोर भी परमात्मा पर विश्वास करता है और प्रार्थना करता है कि मैं आज अपने कर्म में सफल हो जाऊं। दुष्ट व्यक्ति भी दुष्टता ही में सफल होने के लिए प्रार्थना करता है, और चोर चोर के बीच में भी एक आपस में विश्वास रहती है। अब ये नहीं कह सकते कि चोर में विश्वास नहीं है, यदि चोर में विश्वास न हो तो चोरी कैसे करेगा। अब ये नहीं कह सकते हैं कि उसके कर्म में उसको विश्वास नहीं है, कर्म में उसको विश्वास है। इसका मतलब है कि विश्वास उसकी कला है, कला के बिना तो मनुष्य जिएगा ही नहीं, तो श्रद्धा के बिना तो मनुष्य जिएगा ही नहीं, विश्वास के बिना तो मनुष्य जिएगा ही नहीं। अपनी मां पर विश्वास न करे भले ही, पत्नी पर तो विश्वास करेगा ना। अपने पत्नी पर विश्वास न करे भले, मां पर विश्वास करेगा। मां और पत्नी पर विश्वास न करे तो फिर नौकर पर विश्वास करेगा भाई, कहीं ना कहीं तो उसके विश्वास का केंद्र बनना पड़े, क्योंकि उसके अंदर विश्वास है, कहीं ना कहीं श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा है तो, क्योंकि उसकी ये अंग कला है, विशेषता है। प्राण के बाद दूसरे कला है श्रद्धा। ये जीवात्मा की कलाएं हैं। आप लोगों ने तो खाली कृष्ण की 16 कला भागवत में सुनी होगी, तुम्हारी भी 16 कला है, तुम भी कृष्ण से कम नहीं हो बाबा, तुम भी अपनी कला से परिपूर्ण हो तुम, इसीलिए तो तुमको भी पूर्ण मधव पूर्ण मिदम कह दिया जाता है। ये तो अपनी अविद्या और मूर्खता के कारण ऐसा लग रहा है कि मैं अपूर्ण हूं। ये श्रद्धा आदि जो 16 कला है, इनका प्रयोग करो तो फिर तुम स्वयं ही परिपूर्णता का अनुभव करोगे। तीसरी कला है आकाश, क्योंकि शरीर के अंदर आकाश तत्व विद्यमान है। आकाश के जो सूक्ष्म भाग हैं वही अंतःकरण इंद्रिय आदि बनते हैं, स्थूल भाग है, पंचीकरण के द्वारा स्थूल शरीर बनता है, इसलिए ये भूत पंचक हैं, ये 5 कला हैं। तो क्या हो गए, कितनी हो गए, 7 हो गए, प्राण, श्रद्धा और पंच महाभूत, 6-7 हो गए। इंद्रियां 8वीं कला है, इंद्रियां 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेन्द्रियां जो सूक्ष्म भूतों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, वह जीवात्मा की कला है। परमात्मा की इंद्रियां नहीं है, इसलिए परमात्मा की कला इंद्रियां परमात्मा की कला नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने कृष्ण की जो कलाएं सुनी है 16 कला, उसमें इंद्रियों की गणना नहीं है, भूतों की गणना नहीं है, प्राण की गणना नहीं है, श्रद्धा की गणना नहीं है, क्योंकि परमात्मा इनसे जीने वाला व्यक्ति नहीं है, उसकी अपनी कला विशेष है। इंद्रियां जीवात्मा की कला है। नौवीं कला है मन, इसलिए ईश्वर के पास मन नहीं है, हम हमेशा कहा करते हैं जीवात्मा के पास ही मन है, उसी मन के द्वारा वह अविद्या से भी जुड़कर संसार के अनात्म पदार्थों से संबंध रखता, योग रखता है, इसी मन के द्वारा वह विद्या से जुड़कर परमात्मा के साथ योग रखता है, उसी को तो कहा न आदि ससंयोग निमित्त हेतु, विद्या विद्या संयोग निमित्त हेतु। मन कौन सी है? नौवीं है। दसवीं कला है अन्न, अद्यते इति अन्न, जीवात्मा कुछ न कुछ ग्रहण करता है, हर इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण, यही अन्न है। धान्य आदि यह प्राण का अन्न हो सकता है, मुख के द्वारा खाया जाता है, इसलिए रूप आदि आंख का अन्न होता है, इसलिए आहार शब्द का अर्थ विषय कहा। आरियंते इंद्रिय ही विषयान इति आहार, जो इंद्रियों के द्वारा आधान अंदर लाया जाता है उसी को कहते हैं आहार। संत लोग आहार शुद्धि की बात करते हैं, आहार शुद्धि का अर्थ केवल भोजन शुद्धि नहीं है, आहार शुद्धि का अर्थ होता है यावत विषय की शुद्धि।